प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज भी आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और यह आज इस पुस्तक का अंतिम अध्ययन होगा। लेकिन इससे पहले कि आज अपने अध्ययन में हम सब आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यशाया की पुस्तक से अध्ययन करने का सौभाग्य दिया। आज जब हम इस अध्ययन का अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। हम सबसे आप बोले और बातचीत करें। हमारी प्रार्थना है कि प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की आत्मिक जरूरतों को आप पूरा करें। जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी न किसी प्रकार के तनाव में हैं, पिताजी आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा आप उन्हें सामर्थ्य दें। आज जब हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में आते हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि इस पुस्तक में जो कुछ हमने सीखा है अपने जीवन में हम रख सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर ने इसराइल पर से अपनी छत्र छाया हटा ली। परमेश्वर इसके कारण भी देता है कि क्यों उसने ऐसा किया। वे आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे और व्यवस्था पालन के साथ साथ उसी निष्ठा से अपराध भी कर रहे थे। परंतु परमेश्वर ने कहा कि वह भक्तों के इस समूह को बचा रखेगा कि उनके द्वारा उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो। हम देखेंगे भक्त जनों का शेष समूह, कुछ भक्त जन बचेंगे कि परमेश्वर उनके द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। परमेश्वर के पास भक्त जनों का एक समूह सदा ही रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक 65 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर क्योंकि उसमें आशीष है, उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट न करूंगा। उनके पापों के उपरांत भी परमेश्वर सर्वनाश नहीं करेगा क्योंकि उनमें कुछ विश्वासी भक्त हैं जिनकी तुलना वह अंगूर के अति उत्तम गुच्छे के साथ करता है जिसे अनदेखा नहीं किया गया है। हम यशाया के पुस्तक 65 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। मैं याकूब में से एक वंश, एक प्रकार से यह प्रभु यीशु के बारे में है, परंतु यह इसराइल के बचाए हुए भक्त जन हैं। इन भक्तों के कारण परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। हम आगे पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक 65 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। इससे शेष रहे भक्तों के झुंड के लिए एक सुरक्षित स्थान भी होगा। यशाया 65 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। इन भक्त जनों की अपेक्षा शेष इसराइल, जिसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, दंड की अपेक्षा और कुछ भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं समझ नहीं पाता कि बुद्धिमान मनुष्य जो परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं कैसे ये भूल जाते हैं और कैसे ये असंभावी दंड के ऊपर आ जाते हैं, कैसे चूक जाते हैं। अवश्यंभावी दंड और सब वस्तुओं के सुधार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि वे पाप करते रहें तो इसराइल के बहुमत के समान वे भी दंड पाएंगे। आज मनुष्य को बार बार परमेश्वर चेतावनी देता है, परंतु मनुष्य उसे ध्यान में नहीं रखता। आज हम प्राकृतिक विपदाओं को देखते हैं जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर सृष्टि पर अधिकार रखता है, लेकिन फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते और उसकी ओर नहीं जाते। यशाया 65 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, देखो मेरे दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे, परंतु तुम शोक से चिल्लाओगे और खेत के मारे हाय हाय करोगे। ध्यान दीजिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने संपूर्ण इसराइल, शेष बचने वाले इसराइली भक्तों में अंतर किया, उसी प्रकार परमेश्वर वर्तमान कलीसिया में अंतर करता है। कलीसिया एक विशाल सभा है जिसकी सदस्यता बहुत महान है। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या कलीसिया वहां क्लेश में होगी? क्या कलीसिया सताव के समय में होगी? जी हां, प्रकाशित वाक्य 17 की वेश्या महाक्लेश में रहेगी। वह एक संस्था है जो मसीह की दुल्हन नहीं है। मसीह की देह के विश्वासी महाक्लेश से पूर्व ही उठा लिए जाएंगे। हमें बाहरी दिखावे में और सत्य में अंतर करना सीखना है। हम आगे देखेंगे नए आकाश और नई पृथ्वी का प्रगटीकरण। यशाया की पुस्तक 65 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। मेरे प्रियो, समय के क्रम में नया आकाश और नई पृथ्वी प्रभु राज से पूर्व प्रकट होंगे, परंतु सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञात होता है कि भक्त जनों का यह समूह प्रभु राज में प्रवेश कर चुका है। अन्यों का न्याय किया गया है और वे प्रभु राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मती रची सुसमाचार 25 अध्याय उसके 34 पद में प्रभु यीशु ने इसे स्पष्ट किया है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बाकी लोगों को वह आग में डाल देगा, वे प्रभु राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु के 1000 वर्ष राज करने के बाद, अंतिम विद्रोह के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। कलीसिया के उठाए जाने के बाद और प्रभु राज्य के समय पृथ्वी पर गंभीर परिवर्तन आएंगे। रेगिस्तान फूलों से खिल उठेगा। नई पृथ्वी पर न तो समुद्र होगा और न ही रेगिस्तान होगा। यह नई पृथ्वी होगी, हम पुराने के बदले नया पाएंगे। दूसरा पत्रस की पत्री 3 अध्याय के अनुसार 3 संसार होंगे। पहला नूह के युग में पानी से नष्ट हो गया था। दूसरा आज का संसार जो आग से नष्ट हो जाएगा। तब आएगी नई पृथ्वी और नया आकाश। हम यशाया 65 उसके 18 पद में पढ़ते हैं, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यशाया निश्चय ही प्रभु राज्य के समय की आशीषों का उल्लेख कर रहा है जो अनंत युग का एक पक्ष होगा, परंतु आशीषों के साथ वह दंड का समय भी होगा। मेरे प्रियो, मेरे विचार में जब तक परमेश्वर के पलटा लेने अर्थात दंड की योजना पूरी न हो जाए तब तक नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट न होंगे। दंड की समाप्ति पर हम नए के लिए तैयार रहेंगे। मेरे विचार में प्रभु राज के 1000 वर्षों में परमेश्वर की संतान के लिए और भी अधिक अद्भुत बातें हैं। मनुष्य की क्षमता में महान वृद्धि होगी। यरूशलेम आनंद नगरी होगा। आज तो ऐसा नहीं है। आज वहां विलाप की दीवार है और बहुत कम मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, परंतु परमेश्वर एक दिन उसे आनंद की नगरी बनाएगा। यशाया 65 के 19 पद में लिखा है, मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। यरूशलेम की कैसी कायापलट होगी। वहां पर दुख के बजाय आशीषें और आनंद होगी। यशाया 65 उसके 20 पद में लिखा है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। प्रभु राज का एक गुण होगा कि दीर्घकालीन जीवन जो पितरों के युग से पूर्व था, उस समय वृद्ध जनों के आश्रम नहीं होंगे क्योंकि कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, हम सब जवान ही बने रहेंगे। क्या ही आनंद की बात होगी। यशाया 65 के 21 पद में लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। प्रभु राज का एक और गुण होगा समृद्धि, वह आशीषों का समय होगा। यशाया 65 और उसके 22 पद में लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उस युग में स्थिरता और दृढ़ता होगी। यशाया 65 के 25 में लिखा है, भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही होगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा, यहोवा का यही वचन है। मेरे मित्रों, आज ऐसा नहीं है। यदि आज भेड़िया और भेड़ एक साथ हैं तो भेड़िया भेड़ को खा रहा है। उस युग में एक साथ होंगे और शेर घास खाएगा। मैं एक युवा प्रचारक की घटना आपको सुनाता हूँ। एक युवक ने डॉक्टर जॉर्ज गिल की एक सभा में पूछा, क्या किसी ने शेर को घास खाते हुए सुना है? सब जानते हैं कि शेर घास नहीं खाता है। डॉक्टर गिल ने अपने स्वाभाविक निश्चिंता के साथ में कहा, युवक, यदि आप शेर की सृष्टि कर दें तो मैं उसे घास खिला सकता हूँ, अतः जिसने उसे बनाया है वह चाहेगा तो शेर घास खाएगा। उस युग में नुकीले बड़े दांत और पैने नाखून प्राणी जगत पर राज नहीं करेंगे। जंगल के नियम राजा के नियमों पर आधारित होंगे। संपूर्ण संसार से दुख, हानि, बीमारी और भय की समाप्ति हो जाएगी। तब यह पृथ्वी नई होगी और नया क्या होगा हम इसे देखेंगे यशाया की पुस्तक उसके 66 अध्याय में। मेरे प्रिय, यहां पर अध्याय 65 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 66 अर्थात इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में आते हैं, जिसका विषय है सृजनहार, शासक, उद्धारक, न्यायी, पुनरुद्वारक, प्रतिफलदाता, प्रभु के हाथ में उद्धार प्राप्त एवं खोए हुओं की नियति। आज हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए। इसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6:10 पद में पढ़ते हैं। यशाया 66 में राज्य आ चुका है। सृजनहार, शासक, उद्धारक, न्यायी, पुनरुद्वारक तथा प्रतिफल दाता, इन सबको हम देखते हैं। आइए आप मेरे साथ यशाया के पुस्तक 66 अध्याय उसके एक पद को पढ़िए। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यह पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं महत्व नहीं रखती है और यह तो परमेश्वर के पांव की चौकी है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। सुलेमान जानता था, जो एक राजा और विद्वान व्यक्ति था, इस बात को जानता था कि पृथ्वी पर बनाया गया कैसा भी भवन परमेश्वर के निवास योग्य नहीं है। इसलिए पहला राजा की पुस्तक 8 अध्याय उसके 27 पद में वह कहता है, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? अतः मेरी समझ में परमेश्वर के राज्य का अनंतकालीन स्वभाव परमेश्वर की सज्ञात उपस्थिति होगी और आपको मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे विचार में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का नया यरूशलेम पृथ्वीवासियों के लिए आने का और आराधना करने का स्थान होगा। सृजनहार परमेश्वर, जो महान है, पवित्र है, परम प्रधान है, कहता है यशाया की पुस्तक 66 अध्याय उसके 2 पद में, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रियो, इस विशाल जगत का सृजनहार जो इसके ऊपर है, इसके परे है, मन के दीन और खेदित मन वालों के मध्य वास करने का विचार करता है। परमेश्वर की कैसी दया दृष्टि है! उस युग में मन के दीन पृथ्वी पर सब बातों में राज्य करेंगे। यशाया की पुस्तक 66 अध्याय उसके 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है, जो कुत्ते का गला काटता है, जो अनबलि चढ़ाता है वह मानो सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है, जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। उस युग में बलि चढ़ाने की व्यवस्था न होगी। आत्मिक अर्थ से रहित बछड़ा बलि करना उस युग में हत्या के बराबर होगा। अनंतकालीन युग में हर एक वस्तु प्रभु यीशु की ओर संकेत करेगी और पूर्वकालीन आज्ञा पाप होगी। यशाया 66 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो, तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाएं, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। झूठ और सच में परमेश्वर अंतर करेगा। प्रभु यीशु ने कहा था कि गेहूं और खरपतवार को एक साथ उगने दो, वही उन्हें अलग अलग करेगा। अब समय आ गया है कि धार्मिक अभ्यासों में क्रमवार सिद्धता पाने वाला फरीसी बाहर निकाला जाएगा, दूर खड़ा होकर पापों की क्षमा मांगने वाला साधारण मनुष्य ग्रहण किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो अपने आप को दीन करेगा उसे स्वीकार किया जाएगा, जो अपने आप को धर्मी बनाने का नाटक करेगा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यशाया 66 अध्याय के 6 पद में लिखा है, सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है, वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। परमेश्वर अंत में इसराइल के बैरियों को नष्ट करेगा, क्योंकि वे उसके भी बैरी हैं। यशाया की पुस्तक 66 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। प्रसव पीड़ा, यह महाक्लेश का समय है। बेतलेहम में मसीह के जन्म के बाद इसराइल महाक्लेश में गया। उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसने बेटा जन्मा है, वह प्रभु यीशु था। यह एक अद्भुत पद है। यशाया के पुस्तक 66 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी हो। महाक्लेश से पूर्व मुहर लगाए गए और 144,000 इसराइली महाक्लेश के पार लगेंगे, एक भी कम नहीं होगा। यह कैसी अद्भुत बात है। अब वह कहता है यशाया के पुस्तक 66 अध्याय के 10 पद में, हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। आशीषों का यह कैसा समय है। प्रभु उद्धार प्राप्त एवं खोए हुओं की नियति निश्चित करता है। यशाया 66 अध्याय के 18 पद में लिखा है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। जी हां, सब जातियों को उसके सामने खड़ा होना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 31 और 32 पद में प्रभु यीशु ने इस विषय में कहा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मेरे मित्रों, उस समय असीम संख्या में अन्य जातियां और बहुत इसराइली उद्धार पाएंगे। अन्य जातियां यरूशलेम में आराधना के लिए आएंगे। यशाया की पुस्तक 66 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। इसराइल के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं और उद्देश्य सदा अनंत कालीन ही होंगे, जैसे नई पृथ्वी और नया आकाश। हम आगे पढ़ेंगे यशाया 66 उसके 23 पद में, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। सब युगों के उद्धार प्राप्त अनंत काल तक परमेश्वर की उपासना करेंगे। यह अनंत काल का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण कार्य होगा। यशाया के पुस्तक 66 अध्याय के 24 पद में, अर्थात इस पुस्तक के अंतिम पद में हम पढ़ते हैं, तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे, उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। दूसरे शब्दों में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। यशाया के पुस्तक 57 अध्याय उसके 21 पद में, न शांति, न विश्राम, न संतोष, न परमेश्वर, यह उनकी अनंत दशा होगी। मेरे मित्रों, यशाया के पुस्तक तीसरी बार चेतावनी देकर संदेश समाप्त करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। मेरे प्रिय मित्रों, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है कि अंतिम समय में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह उसके राज्य में होगा, परंतु जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, उसे ग्रहण नहीं करता है, वह हमेशा के लिए नाश किया जाएगा। और जैसा हमने अंतिम पद में पढ़ा है कि उसके शरीर में कीड़े होंगे और वे कभी ना मरेंगे। मेरे प्रियो, यह अनंत काल की मृत्यु है, अर्थात नरक की मृत्यु है। और मैं सोचता हूं कि हम में से कोई भी इसे प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। तो क्यों ना आज हम इस यशायाह की पुस्तक के वचन के प्रकाशन के अनुसार अपने मन और दिल को जांचें, प्रार्थना करें कि हम दीन बने और प्रभु यीशु के पास आकर उसे स्वीकार करें, अपने जीवन में उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और उन महान आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करें जिसे परमेश्वर इसराइलियों को और अपने भक्त गणों को देना चाहता है। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम दूसरे पुस्तकों के साथ अध्ययन आरंभ करेंगे। कृपया आप फिर से अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि हम निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है, आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है। माफ कर मेरे से मेरी फरियाद है, आज गुनाह के सबब से दिल मेरा नाशाद है। दोस्तों का साथ है गुनाह की जिंदगी, दोस्तों दोस्तों का साथ है, है गुनाह